بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سب سے پہلے تو میں آج تمام دیش واسی بھائیوں کو جو نواپور اور نواپور کے اطراف میں رہتے ہیں، اس میں سبھی دھرم، سبھی پارٹی اور سبھی کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے ہیں، ان سب کو دل سے مبارکبادی دیتا ہوں اور ایک سچی بات بتلا رہا ہوں کہ آج کا یہ دن نواپور کی زمین کے لیے یوں سمجھ لو کہ عید کے دن سے کم نہیں ہے. اس لیے کہ اتنی شاندار قومی ایکتا ہے جو اس وقت پر ہمیں نظر آ رہی ہے، اللہ اس کو نظر بد سے محفوظ فرمائے. میں ایک بات آپ سے دھرم پستکوں کے لیے عرض کر دوں، قرآن میں بھی ہے اور وید میں بھی ہے، میں کچھ کچھ وید بھی پڑھا ہوا ہوں، قرآن میں بھی ہے وید میں بھی ہے کہ سب سے پہلے مانو، سب سے پہلے انسان جن کو ہم قرآن کی پریبھاشا میں آدم کہتے ہیں اور جن کو وید کی بھاشا میں منو کہا گیا ہے، میں آپ کی جانکاری کے لیے بتلانا چاہتا ہوں، اللہ نے پرمیشور نے جب آدم کو منو کو اس پرتھوی پر اس جگت میں بھیجنے کا فیصلہ کیا تو اللہ نے پرمیشور نے اس کے لیے ہندوستان کی زمین کو پسند فرمایا ہے. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ کی نظر کے اندر ہماری اس ملک کی، ہندوستان کی زمین کی کتنی قدر ویلیو اور اہمیت ہوگی، اس کا آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں. اور ایک بات جو اپنی آنکھ سے دیکھی ہوئی ہے، پورے یقین اور پورے اعتماد کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ دھارمک ویاخیان کے لیے دنیا کے چاروں کونوں کا الحمدللہ سفر کر چکا ہوں، نیوزیلینڈ سے امریکہ تک، یوروپ سے افریقہ تک کرتا رہتا ہوں، لیکن ایک بات بہت یقین کے ساتھ میں آپ سب سے کہنا چاہتا ہوں کہ دنیا کے اتنے سارے ملکوں کے سفر کے بعد بہت اعتماد سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جو قومی ایکتا میں نے ہمارے ہندوستان میں دیکھی ہے، دنیا میں کسی ملک میں میں نے یہ نظارہ نہیں دیکھا. اور میں آپ سے کیا عرض کروں، ابھی ہمارے ماننیہ نائک صاحب مانک راؤ دادا جی، انہوں نے بہت ہی گوٹوک بہت صحیح باتیں ہمارے سامنے رکھی ہے، ان سے پہلے بھی جو ہمارے مہانوبھاؤ آئے، اور ابھی ایس پی صاحب نے جو ایک بات کہی وہ بہت دل سے لگنے والی اور آج کے زمانے کے اعتبار سے بہت ضروری بات تھی کہ سب دھرم کے لوگ آپس میں ایک دوسرے سے ملے، ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں اور ایک دوسرے کے بارے میں جو غلط فہمی ہے، مس انڈرسٹینڈنگ ہے، اس کو دور کرنے کی ہم کوشش کریں. میں نواپور کے سبھی دھرم کے سبھی آیوجکوں کو جنہوں نے آج کے پروگرام کا آیوجن کیا ہے مبارکبادی دیتا ہوں کہ آپ نے آج کے زمانے کی بہت اہم ضرورت پر یہ پروگرام رکھا ہے، اللہ آپ کی اس کوشش کو قبول فرمائے. میں آپ کو ایک ہسٹری کا اسٹوڈنٹ ہونے کی حیثیت سے ایک تو باتیں پیچھے کی آپ سے پہلے بتلا دوں کہ ہمارا دیش غلام کیسے بنا تھا، اور ہمارا دیش गुलामी की जंजीरों में कैसे गया था, मेरे सामने हिस्ट्री और इतिहास के इस कदर रेफरेंस हैं कि मैं उसकी रोशनी में कह सकता हूँ कि हमारा देश जो गुलामी की जंजीरों में जकड़ा गया था वो हमारे आपस के वैरझेर, आपस के लड़ाई झगड़ों की वजह से हमारा देश गुलामी की जंजीर में गया था। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, ब्रिटिशरों ने डिवाइड एंड रूल जो उनकी एक बहुत गंदी पॉलिसी है, उस पॉलिसी से नाकाम गंदा फायदा उठा करके हमारे मुल्क को गुलामी की जंजीरों के अंदर जकड़ करके रखा और सोने की चिड़िया जैसे हमारे इस मुल्क को लूट खसोट करके तबाह करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। लेकिन जिस दिन हमारी आंख खुली है उस दिन हमने जब संभल करके अपनी इस गलती को दुरुस्त करने की, ठीक करने की कोशिश की है तो आजादी की मंजिल बहुत जल्दी हमारे हाथ में आई है। आपकी जानकारी के लिए भी बतला दूं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो कुछ हमारे देश में किया उसके सारे रिकॉर्ड, ऑल रिकॉर्ड्स उसके लंदन शहर में ब्रिटिश लाइब्रेरी में और लंदन शहर में इंडिया लाइब्रेरी के अंदर मौजूद है। और मैं ब्रिटिश लाइब्रेरी का मेंबर हूँ, मेरे सामने वो डॉक्यूमेंट्स हैं, मैंने उसको खुद जाकर के वहाँ रिसर्च किए हैं। मैं आपसे बतलाऊं कि 1857 के अंदर जब हमारे देशवासियों ने, जिसमें सभी धर्म के सिपाही थे, जब आज़ादी की लड़ाई शुरू की थी तो आपको ये बात सुनकर के ताज्जुब होगा कि आज़ादी के सिपाही जब मेरठ से रवाना होकर दिल्ली के लाल किले के अंदर पहुंचे हैं तो खुद हिंदू सिपाहियों ने आगे चल करके बहादुर शाह जफर से ये विनंती की, रिक्वेस्ट की कि हमारी इस चरवड़ के जनरल, कर्नल, कमांडर इन चीफ आप रहेंगे और हम आपको अपना बड़ा मानते हैं। डॉक्टर पीसी जोशी अपनी बुक में पेज नंबर 184 के ऊपर लिखते हैं कि हिंदू सिपाहियों ने आगे चल करके बहादुर शाह जफर को फ्रीडम फाइट का जो लीडर बनाया उसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये हुआ कि हिंदू और मुसलमानों के दरमियान में एकता मजबूत हो गई। एक और बात मैं आपसे कहूं, डॉक्टर विपिन चंद्र अपनी बुक फ्रीडम स्ट्रगल पेज नंबर 43 के ऊपर लिखते हैं कि हिंदू और मुस्लिम सिपाही 1857 की वॉर के मौके के ऊपर हर एक दूसरे की भावनाओं की कदर करते थे। और डॉक्टर विपिन चंद्र ने जो आगे लिखा है वो हम में से हर एक को सुनने के काबिल है। वो लिखते हैं कि 1858 से पहले हमारे देश के अंदर कौमवाद का नामो निशान नहीं था। इससे ये बात खुद हमारे सामने आती है कि ब्रिटिशरों ने आकर के हमारे देश में कौमवाद के नापाक बीज लगाए और वो इसीलिए लगाए थे कि वो हमारे मुल्क को तबाह और बर्बाद करना चाहते थे। एक मरतबा हम इसकी सजा भुगत चुके, अब हम सबको मिलजुल करके आज के इस सेमिनार में प्रतिज्ञा करके जाना है कि इस भूल को अब इंशाल्लाह कभी नहीं होने देंगे। और मैं आपसे ये बात बहुत यकीन के साथ कह रहा हूं कि वीर सेनानी तात्या तोपे जब कानपुर से अंग्रेजों के सामने लड़ते लड़ते लखनऊ पहुंचे हैं तो उस जमाने में लखनऊ की मुस्लिम रानी हजरत महल ने वीर सेनानी तात्या तोपे का शानदार स्वागत किया। इस निस्बत से स्वागत किया कि कि ये सेनानी अगरचे मुसलमान नहीं है लेकिन इसने देश के खातिर इतनी जबरदस्त कुर्बानी दी है, तो लखनऊ के दरवाजे के ऊपर 11 तोपों के जरिए वीर सेनानी कातिया तोपे को सलामी दी और लखनऊ के आलिशान शीश महल के अंदर कातिया तोपे को रखा और वहाँ उनको शानदार इनाम और एजाज से नवाजा। और रानी बेगम महल ने यह कहा कि हम देश की आज़ादी के बारे में कोई हिंदू कोई मुस्लिम नहीं, हम सब एक देशवासी हैं और इसीलिए मैं आपका स्वागत करती हूँ। फिर नाना साहेब जब कानपुर से लखनऊ पहुँचे हैं तो कानपुर के ज़माने के अंदर नाना साहब जब अंग्रेज़ों के खिलाफ अपनी लड़क चला रहे थे तो अजीमुल्ला खान उनके खास फ्रेंड थे और दोनों ने मिलकर नाना साहब ने और अजीमुल्ला खान दोनों ने मिलकर के पूरी ताकत के साथ कानपुर में अंग्रेज़ों के सामने आवाज़ उठाए और कानपुर के एक वीर शमशुद्दीन के मकान पर नाना साहब बैठ करके गुप्त मंत्रणाएँ किया करते थे। ये वो हमारे इतिहास की सच्ची दास्तान है कि देश की आज़ादी के लिए हम लोग एक थे तो आज़ादी की मंजिल हमें बहुत आसानी से हासिल हुई है। एक और बात मैं आपसे बतलाऊं कि राजा महार सिंह जो शामली के राजा थे, शामली के मेरठ के बाजू में एक स्टेट था उस जमाने में, आज एक शहर है, वहाँ एक अंग्रेज जनरल एडवर्ड्स ने गुरखाओं के जरिए से पूरे शामली के ऊपर उसने कब्जा जमाया और राजा महार सिंह को शामली की हुकूमत से हटा दिया। तो उस मौके के ऊपर देवबंद मदरसा जो इस हिंदुस्तान के अंदर बल्कि एशिया के अंदर वो मदरसा है जिसको इस देश की आज़ादी के खातिर 1867 के अंदर कायम किया गया। जब 1857 के अंदर हम लोग नाकाम हुए तो 10 बरस के बाद देश की आज़ादी के महान हेतु को प्राप्त करने के लिए 1867 के अंदर देवबंद में जो मदरसा बनाया गया उस मदरसे के फाउंडर स्थापक मौलाना मोहम्मद कासिम नानुद्वी, मौलाना रशीद अहमद गंगोही, मौलाना अब्दुल गनी और मौलाना मोहम्मद याकूब साहब और इन सब के गुरुजी हजरत हाजी इमदादुल्लाह महाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह, इन सब ने सर पे कफन बांध करके राजा महार सिंह की हुकूमत को दोबारा शामली में कायम करने के लिए जबरदस्त कुर्बानी दी और 1000 बुजुर्गों ने, आलिमों ने, मुफ्तियों ने उस मौके पर शामली की लड़ाई के अंदर शहादत दी और 132 आलिमों को महाजन वाले बाग के अंदर फांसी के ऊपर लटकाया गया। ये वो हकीकत है जो हमारे हिंदुस्तान के ओडिशा स्टेट के एक्स गवर्नर डॉक्टर पांडे ने अपनी बुक के अंदर लिखी हुई है कि डॉक्टर महार सिंह को शामली के अंदर दोबारा हुकूमत दिलाने के वास्ते देवबंद मदरसे के आलिम लोग उन्होंने मैदान में आकर के अंग्रेजों का मुकाबला किया और 1000 आलिमों ने शहादत ली और जान की कुर्बानी देकर के उन्होंने दोबारा शामली के ऊपर राजा महार सिंह की हुकूमत को दोबारा कायम किया। ये हमारे इतिहास की वो शानदार यादगारें हैं मेरे दोस्तों कि आज़ादी के दिनों के अंदर हम सब एक थे और एक होकर के हमने इस मुल्क की आज़ादी के खातिर जो है कुर्बानियाँ दी हैं। इसी मौके के ऊपर डॉक्टर मेवाराम गुप्ता वो अपनी बुक के अंदर एक मौके पर लिखते हैं, बहुत दर्द से लिखते हैं कि 1857 की वॉर के अंदर, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, डॉक्टर मेवाराम गुप्ता अपनी बुक में लिख रहे हैं कि 1857 की वॉर के अंदर 1-2000 में 500,000 मुसलमानों को दिल्ली के अंदर शहीद और कत्ल किया गया है और 27,000 मौलवियों को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये ऑर्डर किया था जिसके चेहरे पर दाढ़ी हो, जिसके सर पर टोपी हो और जिसने कुर्ता पहना हो, ये सब जो है अंग्रेजों के गद्दार हैं और भारत देश प्रेमी लोग हैं, इन लोगों को फांसी के ऊपर लटका दिया जाए। ये निशानी थी उस जमाने के अंदर अंग्रेज के प्रेमी होगी। अंग्रेजों के इस ऑर्डर की वजह से मिलिट्री में डॉक्टर मेवाराम गुप्ता लिखते हैं कि 27,000 वो मौलवी के जिनके चेहरे पर दाढ़ी और सर पे टोपी होती थी उनको फांसी के ऊपर लटका करके खत्म कर दिया। आज मुझे बहुत दुख से ये बात कहनी पड़ रही है कि आज ऐसी यूनिफॉर्म और ऐसी शक्ल सूरत वालों को शक की नजर से देखा जा रहा है। ये हमारे मुल्क के लिए बहुत अफसोस और गर्व की बात है कि जिन लोगों ने देश की आजादी के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी हो उनको आज देश के अंदर शंका की नजर से देखा जा रहा है। मैं आपको और ले आऊं शहीद अशफाकुल्ला खान के नाम के ऊपर। शहीद अशफाकुल्ला खान जब 19 दिसंबर 1927 को उनको फांसी की सजा दी जा रही है तो जेल में से उन्होंने अपनी माँ के नाम पर एक लेटर लिखा। उस लेटर के अंदर उन्होंने लिखा कि ए मेरी माँ, मौत और जिंदगी दोनों एक रास्ते के मुसाफिर हैं। मौत और जिंदगी दोनों एक रास्ते के मुसाफिर हैं। जो इंसान इस दुनिया में पैदा हुआ है उसको एक न एक दिन मौत जरूर आना है। लेकिन ए मेरी माँ, तो दुनिया में फखर से लोगों को ये कहना कि तेरा बेटा अशफाकुल्ला खान देश की आजादी के वास्ते शहीद हुआ था और दुनिया में लोग तुझे शहीद की माँ के नाम से याद करेंगे। ये लेटर अशफाकुल्ला खान ने जेल के अंदर से अपनी माँ के नाम के ऊपर लिखा। और जब 19 दिसंबर 1927 के दिन अशफाकुल्ला खान को फांसी दी गई तो बिल्कुल उनके पड़ोस के अंदर राम प्रसाद जी को भी फांसी दी गई। अंग्रेज ये नहीं देखते थे कि ये राम प्रसाद जी हिंदू हैं, अशफाकुल्ला खान मुसलमान हैं। उनका टारगेट ये था कि ये भारत देश के लोग हैं, हमें इन लोगों को खत्म करना है, जो उनका टारगेट था। आज हम सबको मिलजुल करके ये दुनिया को दिखाना है कि हम हिंदू मुस्लिम ईसाई से हर कौम के रहने वाले एक हैं और अपने देश के लिए हम हर तरह की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। जब जेल के अंदर फांसी का दिन आया तो शहीद अशफाकुल्ला खान ने आखिरी जो बात कही थी वो सब हमारे दिलों को हिलाने वाली है। उन्होंने कहा कि आज भी मैं ये कहता हूं कि भारत देश के ऊपर विदेशी शासन नहीं चाहिए। हम विदेशी शासन को हमारे भारत देश के ऊपर हरगिज कबूल नहीं कर सकते। फिर अशफाकुल्ला खान ने अपनी जबान से कहा, उनको अंग्रेज जज ने कहा कि एक मर्तबा माफी मांग लो तो मैं तुम्हारी सजा को हल्की करने के लिए तैयार हूं। तो शहीद अशफाकुल्ला खान जवाब में कहते हैं कि खुदा के अलावा किसी से माफी मांगना मैं हराम समझता हूं। भविष्य के अंदर इतिहासकार ये लिखेगा कि हिंदुस्तान के लोग ऐसे बुजदिल हुआ करते थे कि फांसी की सजा से डर करके अंग्रेज जज से माफी मांगते थे, इसीलिए मैं अंग्रेज जज से माफी मांगने के लिए तैयार नहीं हूं, मैं फांसी को चुनने के लिए तैयार हूं। कि जब उनको खड़ा किया गया, उनके गले के अंदर फांसी का फंदा डाला गया तो उस मौके पर जो उनकी आखिरी और लास्ट वसीयत थी उस वसीयत के अंदर उन्होंने आने वाले भारत देश के तमाम नागरिकों को एक मैसेज दिया, वो मैसेज मैं आज आपको देना चाहता हूं। शहीद अशफाकुल्ला खान ने कहा था, भारत के भाइयों, तुम किसी भी मजहब के हो, तुम किसी भी पंथ के हो, देश के लिए एक होकर के काम करना। शहीद अशफाकुल्ला खान का आखिरी मैसेज, गले के अंदर रस्सी का फंदा है और सामने मौत खड़ी है और देशवासियों को मैसेज देकर के जा रहे हैं, भारत के भाइयों, तुम किसी भी मजहब के हो, किसी भी पंथ के हो, लेकिन देश के लिए एक होकर के काम करना, आपस में लड़ाई झगड़ा मत करना। अब बस मैं तुम्हारे दरमियान में से विदाई लेता हूं। ये जुमला अशफाकुल्ला खान ने कहा, बगल के अंदर कुरान करीम एक थैली में था और जबान के ऊपर कुरान की आयत थी, कलिमा पढ़ रहे थे। और जैसे एक मुसलमान मक्का हज यात्रा में जाता है और लब्बैक लब्बैक पढ़ के जाता है, इसी तरह अशफाकुल्ला खान ने जिंदगी के आखिरी घड़ी के अंदर देश की आजादी के खातिर जो मौत का प्याला पिया उसको उन्होंने पवित्र यात्रा हज की तरह समझ करके लब्बेक लब्बेक पढ़ते हुए उनको फांसी पर लटका दिया गया है। ये इन लोगों के जज्बात थे कि वो देश की आजादी की जंग को मक्का की पवित्र यात्रा से भी अफजल समझते थे, इसीलिए जो चीज वो वहां पढ़ते थे वो यहां पर पढ़ते थे। अशफाक उल्लाह खान ने कहा था, किस तरह मरते हैं ये शेरे वतन भारत पर, किस तरह मरते हैं ये शेरे वतन भारत पर, ये तमाशा है जो दुनिया को दिखाना है हमें, ये तमाशा है जो दुनिया को दिखाना है हमें। और आगे बात लिखी अशफाक उल्लाह खान ने, कुछ आरजू नहीं है, कुछ आरजू नहीं है, है आरजू तो ये है, है आरजू तो ये है, रख दे कोई जरा सी खाके वतन मेरे कफन में, रख दे कोई जरा सी खाके वतन मेरे कफन के अंदर, कि मेरे कफन के अंदर हिंदुस्तान की मिट्टी को रख देना, ये मेरी आखिरी तमन्ना और मेरी आखिरी आरजू रहेगी। ये पैगाम और मैसेज लेकर के वो यहाँ से देश की आजादी के खातिर फांसी के फंदे को चूम करके विदाई हुए। मेरे सभी भारतवासी भाइयों, हर मजहब के भाइयों, बहुत सही बात आपके सामने कही गई थी स्टैटिक के अंदर, इस सभा के मकासिद बतलाते हुए जनाब गुलाम भाई ने, कि हमारा भारत देश एक बॉडी और जिस्म की तरह है, एक बदन की तरह है, और जितनी कौम यहाँ रहती है वो एक शरीर के अवयव और अंग की तरह है। अगर शरीर का कोई अंग, बॉडी का कोई पार्ट अगर उस पर पैरालिस हो जाए, उसको लकवा लग जाए, तो पूरी बॉडी बीमार समझी जाती है। मैं बहुत दर्द से कहूंगा, इस देश की कोई भी कौम, कोई भी कम्युनिटी अगर कमजोर, पैरालिसिस वाली हो गई, लकवा वाली हो गई, तो पूरी दुनिया के अंदर हमारा देश रोगी और बीमार समझा जाएगा। और एक और बात मैं आपके सामने अर्ज कर दूं, आज स्टेज के ऊपर कितने शानदार गुलदस्ते रखे हुए हैं, कितने हसीन ये फूल के पॉट्स रखे हुए हैं, फ्लावर पॉट्स इतने शानदार रखे हुए हैं, और उसमें देखिए किस्म किस्म के फूल हैं, कोई पीला है, कोई लाल है, कोई किसी रंग का है, कोई किसी रंग का है। ये फ्लावर पॉट जो है इसकी खूबसूरती किसमें है, कि हरेक फूल खिला हुआ हो और हरेक फूल तरोताजा हो। अगर एक फूल भी उसके अंदर मुरझाया हुआ होगा तो पूरे गुलदस्ते की खूबसूरती खत्म हो जाएगी। मैं आपसे यकीन के साथ कहता हूं, हमारा देश भारत हिंदुस्तान एक गुलदस्ते और फ्लावर पॉट से भी ज्यादा हसीन और खूबसूरत है। और इसमें बसने वाली तमाम कौमें, तमाम कम्युनिटी एक खिले हुए फूल की तरह है। अगर हर फूल, हर कौम खिली हुई होगी, मुस्कुराती हुई होगी, तो पूरी दुनिया के सामने हमारे देश का नक्शा और हमारी खूबसूरती पूरी दुनिया में चमकती हुई होगी। और अगर एक फूल भी उसमें मुरझाया हुआ होगा तो पूरी दुनिया के सामने हमारे देश का ये फ्लावर पॉट एक बुरी शक्ल के अंदर सामने आएगा। इसलिए हमें कोशिश ये करनी है कोई फूल मुरझाने न पाए, बल्कि ये फूल बस्ता खिला हुआ रहे, जगमगाता हुआ रहे, चमकता हुआ रहे, तो इंशाल्लाह हमारा देश दुनिया के अंदर प्रगति और तरक्की करता रहेगा। और एक बात मैं आपको बहुत यकीन से बतला रहा हूँ, जिनकी इंटरनेशनल इकोनॉमिक पोजीशन के ऊपर नजर है, जो अर्थतंत्र से वाकिफ लोग हैं, वो इस पॉइंट को मेरे बहुत दिल से समझेंगे कि आज दुनिया की जो महासत्ताएं हैं, बहुत मैं जुरत से ये बात कहना चाहता हूँ, आज दुनिया की जो महासत्ताएं हैं, सुपर पावर ताकतें जो कहलाती है, उनको इस बात का डर है कि अगर हिंदुस्तान के अंदर कौमी एकता हो गई तो भारत देश दुनिया की आर्थिक महासत्ता बन जाएगा। इसलिए वो किसी तरह भी हमारे देश के अंदर कौमी एकता को देखना नहीं चाहते। हम इनकी मैली और गंदी और नापाक मुराद को एक होकर के खाक में दफन करके छोड़ेंगे, और जिस दिन ये कौमी एकता नवापुर से निकल करके पूरे हिंदुस्तान के शहर शहर, गांव गांव, गली गली, महल्ला महल्ला हो जाएगी, उस दिन हमारे देश को विश्व की महासत्ता बनने से कोई ताकत नहीं रोक सकेगी। मैं आपसे क्या कहूँ, मेरे बदन के अंदर उस इंसान का खून दौड़ रहा है जो हिंदुस्तान की आजादी का एक सिपाही रहा है। मेरे वालिद बुजुर्ग हुआ फ्रीडम फाइटर है, उनका खून मुझे मिला है। और मैं आज आपको फख्र से कहता हूं कि हिंदुस्तान की जिस संस्था जमीयत उलमाए हिंद से मेरा ताल्लुक है, जिस जमीयत उलमाए हिंद ने इस मुल्क को आजाद कराने के अंदर बेमिसाल कुर्बानी दी है, मैं आज बहुत फख्र से ये बात कह रहा हूं कि जमीयत उलमाए हिंद मुसलमानों की वो संस्था थी और है जिसने 1947 के अंदर देश के पार्टीशन का खुद करके विरोध किया था। जिन शहीद बहादुरों ने, जिन सुरवीर लोगों ने देश के पार्टीशन का विरोध किया था, ऐसे सुरवीरों का खून मुझे विरासत में मिला हुआ है। हम नहीं चाहते थे कि हमारे देश के टुकड़े हो, और आज भी अगर एक मुस्लिम होने के नाते और उससे एक कदम आगे चलकर के मैं आपसे कहूं, एक सच्चे भारतीय राष्ट्रप्रेमी नागरिक होने के नाते अगर कोई मुझसे ये आरजू पूछे कि तुम्हारी आरजू क्या है, तो मैं यूं कहूंगा कि 13 अगस्त 1947 को मेरे भारत देश का जो नक्शा था, मैं उसको दुनिया में फिर से देखना चाहता हूं। ये मेरी आरजू और तमन्ना होगी। जब जर्मनी एक हो सकते हैं तो हम क्यों एक नहीं हो सकते हैं? काश के अंग्रेजों की डिवाइड एंड रूल की गंदी पॉलिसी अगर न होती तो हमारा देश एक होता। बहुत दुख की ये दास्तान है कि हमारे देश के पार्टीशन हुए। और मैं आपसे कहूं, मैं एक इतिहास का विद्यार्थी हूं, स्कॉलर भी हूं, बहुत जिम्मेदारी से कहता हूं, कोई बुरा न माने, इंडियन नेशनल कांग्रेस में और इंडियन नेशनल कांग्रेस की वर्किंग कमेटी ने इस देश की पार्टीशन के फराव को जब मंजूर करने का वक्त आया है, तो उस मौके पर दो मेंबर के विरोध के साथ पार्टीशन को इंडियन नेशनल कांग्रेस ने मंजूर किया था 1947 के अंदर। और दो मेंबर जो विरोधी थे, एक जमीयत उलमाए हिंद के जनरल सेक्रेटरी हजरत मौलाना हिफ्जुर रहमान सिहारवी और आजाद हिंदुस्तान के पहले एजुकेशन मिनिस्टर मौलाना अबुल कलाम आजाद, इन दो मेंबरों ने विरोध किया था। इन दो मेंबरों के विरोध के साथ इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भारत देश के भागने को मंजूर किया था। लेकिन आज मैं डंके की चोट पे कहता हूं कि जमीयत उलमाए हिंद ने पार्टीशन का विरोध किया था। इस संस्था ने कभी पार्टीशन को मंजूर नहीं रखा था। वो जज्बात हम रखते हैं। हम आपको मालूम है, अगर आपने ना देखा हो तो आप देख लेना, इस साल मैं आपको दावत देता हूं कि जब हमारा हज का मौसम आता है और हिंदुस्तान से 1 लाख से ज्यादा हाजी मक्का जाते हैं, तो मक्का के अंदर से हज का प्रोग्राम जो लाइव कास्ट होता है, अगर आपने ना देखा हो तो फिर एक बार मैं आपको देखने की दावत देता हूं, जरूर आप वो प्रोग्राम देख लें। वहां पूरी दुनिया से 40 लाख आज मुसलमान मक्का मदीना में हज पढ़ने के लिए, हज यात्रा के लिए जमा होते हैं। लेकिन हज सीरियल आप जरूर देखें, जब मक्का मदीना की पवित्र भूमि पर हम जाते हैं हज यात्रा करने के लिए, तो जहां हिंदुस्तानी हाजी लोग होंगे, इंडियन हाजी होंगे, तो उस पवित्र भूमि पर भी इस झंडे के साथ आपको देखने मिलेंगे। उस पवित्र भूमि के ऊपर भी जाकर के हम अपने देश प्रेम को भूले नहीं है और नहीं भूलेंगे। हमको तो हमारे वडिलों ने ये सिखाया है, हमारे बुजुर्गों ने ये सिखाया है, हुब्बुल वतन निसफुल ईमान, देश प्रेम तो हमारे मजहब का आधा हिस्सा है। हम इसको अपने मजहब का एक हिस्सा मानते हैं। देश की धरती से प्रेम करना, इसको हम अपने मजहब का एक हिस्सा मानते हैं। और मैं एक आखिरी बात कहकर के आपके बीच से विदाई देता हूं। जब एक आकाश के नीचे हम रहते हैं, एक जमीन पर हम रहते हैं और एक पानी हम पीते हैं, जब एक आकाश है, एक जमीन है, एक पानी पीते हैं, तो फिर ये कौमी भेदभाव की बात हम लाए कहां से? मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। अल्लाह हमारे देश को हमेशा प्रगति के साथ रखे, तरक्की के साथ रखे। मैं इन्हीं दुआओं पर अपनी बात को पूरा करता हूँ। इन सब महानुभावों का, यहाँ की तमाम पार्टियों का, यहाँ की तमाम संस्थाओं का, यहाँ के तमाम समाज के लोगों का और सभी भाइयों का फिर से आपको मुबारकबादी देता हूँ और सही बात कहता हूँ कि रमजान का महीना आ रहा है, उसके बाद ईद का दिन आएगा। लेकिन ये ईद से पहले समझ लो कि एक ईद आज आपके लिए हो रही है कि आज कितना शानदार कौमी एकता का दिन मनाया जा रहा है। अल्लाह हमारे देश को नजर बद से महफूज फरमाए।